ओम शांति। ये वाणी चल रही थी 6 जुलाई 1965 की। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी ब्रह्मपुत्री को माता नहीं कहा जा सकता। क्या ब्रह्मा को माता कहेंगे लेकिन ब्रह्मपुत्री को माता नहीं कहा जा सकता? यह मां नहीं है, इसलिए कलश फिर माताओं को दिया जाता है। माना ब्रह्मपुत्री कौन हुई? जगदम्बा? नहीं, ब्रह्मा और उसकी पुत्री। तो ब्रह्मपुत्री तो सरस्वती है ना? सरस्वती तो शरीर छोड़ दिया, फिर क्या बनती है? सरस्वती हुई छोटी माँ और ब्रह्मा हुआ बड़ी माँ। तो छोटी माँ जाके क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। तो जो लक्ष्मी बनती है उसके लिए बोला वो है ब्रह्मपुत्री। ब्रह्मपुत्री का पार्ट है ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर बहते हुए आना और लास्ट में आकर गंगा से मिल जाना, सागर से मिल जाना। तो कलश ब्रह्मपुत्री को नहीं दिया है, माना लक्ष्मी को नहीं दिया है। शास्त्रों में तो दिया है लेकिन बाबा ने कलश माताओं को दिया है। तुम हो मां की सेना, हम जिंस हो। ऐसे नहीं कि तुम पुरुषों को धिक्कारती हो, नहीं, जानती हो पुरुष ज्यादा गंदे होते हैं। पति कैसा भी गंदा हो तो भी स्त्री पति पति कहकर पुकारती रहेगी। आजकल तो शकल देख फिर शादी करते हैं, आगे तो देखते भी नहीं थे, पैसों की लालच में ही शादी कर लेते थे। फिर शकल काली देखते थे तो कह देते थे नसीब में हमारे जो था सो मिला। सुना होगा कि चित्र पर भी पसंद करते थे। दोनों को एक दो को देख करके फिर पसंद करते थे। सत्युगों में भल सब गोरे होते हैं, फिर भी मैच तो करना पड़ता है, हैं? सत्युग में मैच होगा? माना सत्युग की जो 21 जन्म के युगल होंगे उनका मैच अभी संगम युग में करना पड़ता है पुरुषार्थ के आधार पर। इसलिए बोला सत्युग में भल सब गोरे होते हैं फिर भी मैच तो करना पड़ता है, पड़ता है माना हिसाब किताब है। बिना हिसाब किताब के कोई काम या नहीं होगा। यहाँ तो बड़ा फर्क पड़ जाता है, माने यहाँ की जो दुनिया कलयुगी दुनिया है उस दुनिया में और जो आने वाली दुनिया में उसकी परंपराओं में बहुत फर्क पड़ता है। फिर कहते हैं जो है जैसे हैं तुम्हारे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम जैसा हूँ आपका ही हूँ। यह भी कहते हैं जैसे हो तैसे हो मेरे हो। कौन कहते हैं? यह भी ब्रह्मा माना दादा भी कहते हैं जैसे हो तैसे हो मेरे हो। परंतु श्रीमत पर चलना पड़े। जैसे हो वो तो कोई बात नहीं, जैसे हो तैसे हो, लेकिन सुधरने के लिए क्या करना पड़े? श्रीमत पर चलना पड़े। सजनिया तो सब हैं, सब कहेंगे हम ईश्वर के हैं। लेकिन अब तुमको समझानी दी जाती है। शिव बाबा की तो सब संतान है, परंतु सिद्ध करना है कि पहले पहले है शिव की महिमा, वो है सबसे ऊंचते ऊंच। जो सबसे ऊंचते ऊंच है उनको ही भगवान कहेंगे, इनको नहीं। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या समझ बैठे हैं, गीता का भगवान कृष्ण है, उसका फाउंडेशन कौन डालता है, कहां से पड़ता है? यही ब्राह्मणों की दुनिया से इसका फाउंडेशन पड़ता है कि जो ब्राह्मण है वही इनको गीता का भगवान समझ बैठे हैं। इनको माने किनको? ब्रह्मा को माना, ब्रह्मा उर्फ कृष्ण को, जो कृष्ण की सोल है उसको ही भगवान समझ बैठे हैं। लेकिन वो ऊंचते ऊंच नहीं है, ऊंचते ऊंच इनको नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे। दूर क्यों कर दिया? क्योंकि ये तो बात 65 की थी ना, उस समय भगवान का प्रत्यक्ष पार्ट प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, जो हुआ था माँ के रूप में था, इसलिए बोला उनको ही भगवान कहेंगे। वो शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, यह वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का नहीं देते हैं, वो है निराकार। क्या इनको तो संकल्प विकल्प आते हैं, आकारी स्टेज में भी रहते हैं, देवान में भी आते हैं, लेकिन वह जो है वो है निसंकल्पी स्टेज वाला निराकार। वो सब आत्माओं का बाप है, देहधारियों का नहीं। किसका है? सब आत्माओं का बाप है, माने जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, जिन बच्चों को अपनी आत्मा का पता चल जाता है, आत्मिक स्थिति में टिकने का पुरुषार्थ करते हैं, उनका बाप है। तो अब तुम बच्चियों को अपनी हमजिंस का उद्धार करना है। कौन सी बच्चियों को? तुम माताओं को अपनी हमजिंस का उद्धार करना है। माताओं पर रिस्पांसिबिलिटी है। किस बात की रिस्पांसिबिलिटी है? कि जो बंधन में पड़ी हुई है अपनी उन हमजिंस को उद्धार करें। बंदे मातरम गाया हुआ है, कब गाया हुआ है? ऐसा वंदना करने योग्य कोई काम किया होगा तो वंदे मातरम गाया हुआ है। बाप भी कहते हैं, शिव बालक भी है, तो वंदे मातरम करना पड़े। किसको किसको करना पड़े? कौन करे वंदे मातरम और किसको करे? हैं? अरे शिव बालक भी है, माताओं का कौन है? बालक है। जब माताओं का बच्चा है तो माता को क्या करना पड़े? वंदे मातरम करना पड़े। यह तुमको वंदे मातरम करते हैं, यह है। तुम उनको वंदे मातरम करते हो, यह है। माना ब्रह्मा तुमको वंदे मातरम करते हैं, और तुम यह ब्रह्मा जाकर के जब स्त्री चोला धारण करेंगे, माता के रूप में जगदम्बा बनते हैं, तब तुम उनको करते हो। उनको करके माता को भी दूर कर दिया, और उनको पीछे कह के जगत पिता या परमात्मा पार्ट को भी दूर कर दिया। 6 जुलाई 65 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये वंडरफुल बात है। क्या इनको और उनके का फर्क समझना वंडरफुल बात है। ये भी ड्रामा में नूद है। क्या ये बात समझने समझाने की भी ड्रामा में नूद है तुम भी जानते हो। शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार हो जाता है। मुकुट तो सबको होता है, अभी भी मुकुट सबको है, लेकिन अभी कौन सा मुकुट है? जो भी परमात्मा बाप के बच्चे आत्मिक स्थिति में रहने वाले हैं, उनको अभी कौन सा मुकुट है? अरे जिम्मेवारी का मुकुट है, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी है, प्योरिटी की जिम्मेवारी है, पवित्र दुनिया लाने की जिम्मेवारी है। तो मुकुट तो सबको होता है ना, यह एक ट्रेडमार्क रख दिया है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया, राधा को छोटा दिया है, और कृष्ण को भक्ति मार्ग में बड़ा मुकुट दिखाया है। क्यों? जरूर कृष्ण ने नई दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी का बड़ा ताज उठाया होगा। यहाँ तो इतना बड़ा मुकुट नहीं पहनते, माने यहाँ कृष्ण की सोल इतना बड़ा मुकुट नहीं पहनती है। यहाँ का मतलब क्या हुआ है? या माने ब्रह्मा के द्वारा जो पाठ चल रहा है, और फिर वहां के लिए बोला वहां तो इतना बड़ा मुकुट नहीं पहनते हैं, वहां भी कोई इतना बड़ा मुकुट नहीं होगा, लेकिन भक्ति मार्ग में दिखाया है। वो कहां की यादगार है? वो यहाँ संगम युग में जो पाठ बजाया है उसकी यादगार है। बाप बैठ माताओं को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार कराते हैं, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, तुम प्रिंस की माँ बनेंगी, तुम प्रिंस की माँ बनेंगी, तो तुम्हारी हमजिंस भी क्या हुई? प्रिंस की माता हुई ना। कृष्ण की माँ सब तो नहीं बनेंगी, माने कृष्ण को जन्म देने वाली तो कोई एक ही होगी। प्रिंस प्रिंसेज बहुत होते हैं ना। अरे तो दो दो बातें हो गई, सत्युग में प्रिंस प्रिंसेस बहुत होंगे क्या हैं? कि वहां प्रिंस प्रिंसेस एक ही होंगे? वो तो एक ही होंगे, तो कहां की बात हुई? जरूर जो संगम युगी स्वर्णिम युग आने वाला है उसकी बात बताई, कि प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत है ना, जिनका यादगार शास्त्रों में दिखाया है। प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेगी, बीच में ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके भी बोलते जाते हैं, प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगी। तुम्हारा कितना अच्छा है ऑब्जेक्ट है, वो महाराजा महारानी कौन होंगे जो प्रिंस की माँ बनेगी? हैं? जगत माता होगी, लक्ष्मी नारायण नहीं होंगे? प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगी, तुम्हारा कितना अहम ऑब्जेक्ट है, अच्छा अहम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा, ये बात किससे कर रहे हैं? नहीं, जो वाणी में बात हो रही है वो किससे बात हो रही है? माताओं से बात हो रही है, खासकर जगदम्बा से बात हो रही है। फिर बोला शिव बालक तुम्हारा क्या बने? शिव बालक है तो तुम्हारा क्या हुआ? बच्चा हुआ। तो बंदे मातरम करना पड़े किसको? बच्चे को माता का बंदे मातरम करना पड़े। तो तुम्हारी गोद में प्रिंस होगा, कौन सा प्रिंस? कृष्ण बच्चा तुम्हारा प्रिंस होगा, तो तुम बच्चों पर बहुत जवाबदारी है। कौन से बच्चे की जवाबदारी है? जिसको क्रिश्चियंस लोग लॉर्ड कृष्ण कह के पुकारते हैं, क्या सत्युग के कृष्ण को पुकारते हैं? सत्युग का कृष्ण नहीं है। तो तुम बच्चों पर बहुत जवाबदारी है, तुम्हारी बड़ी जमाइत होनी चाहिए, मेमोरेंडम ग्रुप बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं, उन्होंने तो भारत माता किसको बता दिया? जड़ जमीन को भारत माता समझ लिया है। वास्तव में जड़ जमीन को माता नहीं कहा जाता। माताएं तो तुम शक्तियां हो, हमने भारत को स्वर्ग बनाया है श्रीमत पर, ऐसा मेमोरेंडम बनाना चाहिए। माताओं को बहुत खड़ा होना है, खड़ा होना है, अभी खड़ी हुई नहीं है। आजकल तुम्हारी हमजेंस पर बहुत मार पड़ती है। किसके लिए? बिख के लिए। तो तुमको सरकार के आगे रड़ी मारनी चाहिए, गवर्नमेंट को कहना हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाती है, इसमें हमको यह विघ्न डालते हैं। क्या विघ्न डालते हैं? यह हमको विषय विष पिला करके हमको स्वर्ग बनाने के कार्य में अड़चन डालते हैं, और हम पवित्र रहना चाहती हैं। साथ में जो पुरुषार्थी पांडव हैं, साथ में ये पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता तो अच्छी है। तुम लोग दवाइयों आदि से बच्चा पैदा होना बंद करवाते हो, तुम लोग माना कौन? सरकारी जो तंत्र है वो क्या करते हैं? वो हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, अपने तरीके से दवाइयों आदि से बंद करना चाहते हैं, परंतु इनसे कुछ भी होगा नहीं। तुम कितनी भी कोशिश करो, इन दवाइयों आदि से, अबॉर्शन आदि से कुछ भी होने वाला नहीं है, जनसंख्या कम होने वाली नहीं है। बाप समझाते हैं पवित्र बनो एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। किसको भी कुतरा कुतरी नहीं बनना है। पवित्र बनने का मतलब क्या बताया? कि व्यभिचारी नहीं बनना चाहिए। जितना जितना व्यभिचार दुनिया में बढ़ता जाएगा, संतान की पैदाइश को कोई रोक नहीं सकता। सत्युग त्रेता में व्यभिचारी दुनिया थी तो संतान की पैदाइश कम होती थी। द्वापर युग से जब से द्वैत शुरू हुआ तो व्यभिचार बढ़ गया। व्यभिचार बढ़ने के कारण कुतरे कुतरियों में ढेर सारे बच्चे पैदा होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। तो बाप कहते हैं किसको भी कुतरा कुतरी नहीं बनना है। अभी तो सारे डॉग्स बन पड़े हैं, एक दो को भौंकते रहते हैं, काटते रहते हैं। तुम माताओं के साथ मददगार गोप हैं, तुम्हारे कार्य में मदद करने के लिए ये गोप खड़े हुए हैं। तो हमें ये समझ होनी चाहिए, हमें माने किसे? माताओं को इस बात की समझ होनी चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए और गवर्नमेंट के पास रणी मारनी चाहिए। भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो, शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं, तो सभी भाई भाई हो गए, फिर प्रजापिता की संतान होने से भाई बहन ठहरे। ये बात उनके भी कान में पहुंचानी चाहिए कि जिसको एक निराकार कहते हो, ज्योति बिंदु कहते हो, उस ज्योति बिंदु शिव की तो सब संतान है, बिंदु बिंदु आत्मा आत्मा सब भाई भाई है, लेकिन जब वो प्रजापिता में सृष्टि में आकर प्रवेश करता है तो सब आपस में स्त्री पुरुष चोला होने के कारण भाई बहन बनते हैं। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, जैसे कल पहले प्रजापिता की संतान थी, वैसे वैसे अब सब प्रजापिता की संतान सारी दुनिया बनेगी, बन रहे हैं। हम शिव बाबा की संतान, प्रजापिता के बच्चे, भाई बहन, बकी की लेन देन अब नहीं कर सकते, ये युक्ति है। कल पहले भी बाप ने ऐसा ही पवित्र बनाया था। कैसा? कि हम आपस में भाई भाई की स्टेज में पहुंचे थे। इस माया रावण पर जीत पहनते हैं, ये रावण ही भारत का कड़ा दुश्मन है। कड़ा दुश्मन कौन सा है? क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये कड़े दुश्मन नहीं है। कड़ा दुश्मन है काम महाशत्रु, रावण से हारे हारे राम आयकर इस पर जीत पहनाते हैं। क्या? किसका नाम लिया? राम रावण की लड़ाई प्रसिद्ध है, तो जरूर राम ने आकर अभिचारी बनाया होगा। रावण बेविचारी बनाता है, रावण से हारे हार है। परंतु अब तक कईयों का पति में ऐसा मोह है जो बात मत पूछो। बाप कहते हैं, तुम आजकल जिन्हों को गुरु बनाते हो वह तो तुम्हारी हमजिंस को विधवा बनाए घर बार छोड़ जाते। कौन? सन्यासी लोग। और कहते हैं नारी नरक का द्वार है। खुद गलती करते हैं और गलती थोपते किसके ऊपर है? नारियों के ऊपर। अब तुम माताओं को कलश मिलता है, वो तुमको दोष देते हैं और बाप आकर तुमको ज्ञान का कलश देते हैं। समझाना है, हम तो स्वर्ग के द्वार हैं, हम नरक के द्वार है नहीं, तुमने बनाया है। माना स्त्री जाति को पुरुष ने ही नीचे गिराया है, भगवान आकर उनको माताओं को ऊंचा उठाते हैं। हम स्वर्ग के द्वार हैं, उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखा दिया है। भक्ति मार्ग वाले गुरु ने कलश किसको दिखाया है? क्यों लक्ष्मी को कलश किस लिए दिखा दिया? भगवान ने तो आकर के कलश माताओं को दिया, फिर लक्ष्मी को क्यों दिखाया है?
ज्ञान बांटे।
हाँ, भक्तों को प्राप्ति होती है डायरेक्ट भगवान से नहीं होती है, किससे होती है? लक्ष्मी से प्राप्ति होती है, तो उन्होंने लक्ष्मी का नाम दे दिया है। परंतु लक्ष्मी तो पवित्र है, ज्ञान जल की आवश्यकता किसको है? हैं? माताएं अपवित्र होती हैं या कन्याएं अपवित्र होती है? अपवित्र कौन होती है? माताएं अपवित्र होती हैं। तो माताओं का ज्ञान कलश मिलता है भगवान के थ्रू। एडवांस पार्टी में रुद्रमाला के जो मणके हैं उनको पहले कलश क्यों मिलता है? जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं, विजयमाला के बच्चों को पहले क्यों नहीं मिलता? उनको ज्ञान के पहले क्यों नहीं मिलता एडवांस? ज्यादा जरूरत किसको है? है? जो ज्यादा पतित बने हैं उनको पहले जरूरत है, जो पतित बने ही नहीं उनको ज्ञान की क्या दरकार? गंद साफ करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है गंदे कपड़े को? जो कपड़ा साफ है उसको ज्यादा पानी की दरकार है ही नहीं। तो बोला, उन्होंने भले कलश लक्ष्मी को दिखाया है परंतु लक्ष्मी तो पवित्र है, उसको ज्ञान जल की इतनी दरकार नहीं है। वो ज्ञान अमृत का कलश क्या करेंगी है? अगर उनको ज्ञान अमृत मिलेगा भी तो दूसरों को बांट देंगे, उनको खुद को दरकार तो है नहीं। ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर। क्या कहा? ज्ञान का कलश है जगदम्बा पर, लक्ष्मी पर नहीं। अब परमपिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है, जगदम्बा पर ज्ञान का कलश दिया, लक्ष्मी पर नहीं दिया। रुद्रमाला को ज्ञान का दोष ज्यादा चाहिए, विजयमाला को नहीं चाहिए। क्या साबित हुआ? रुद्रमाला ज्यादा पतित बनती है, उसमें ऊपर के दो मणके कौन है? रुद्रमाला के जो दो मणके हैं ऊपर, सबसे ऊपर, वो कौन से हैं? हैं? जगत पिता और जगदम्बा। तो जो जगत पिता जगदम्बा हैं, वो सबसे ऊपर के दो मणके हैं, ज्यादा ज्ञान की जरूरत भी किसको है? रुद्रमाला के भी जो 108 मणके माने जाते हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान किसको चाहिए, जरूरत किसको है? जगत पिता और जगदम्बा को। तो परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है। इस काम महाशत्रु पर जीत पाने के लिए ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के इस काम महाशत्रु से मुक्ति नहीं हो सकती। जो इस पर जीत पावेंगे वो ही श्रेष्ठाचारी स्वर्ग के देवता बनेंगे। अगर काम महाशत्रु पर जीत नहीं पाई तो काम जीते जगत जीत नहीं बन सकते। काम पर जीता तो जगत जीत बनेंगे, जगत जीत बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। साधु संत महात्मा सब मूत पलीती कपड़ धोती है, क्यों? जिसकी पैदाइश ही मूत से होती है वो मूत के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। वो परमात्मा ही एक ऐसा है जो अजन्मा है, वो गुमूत से पैदा नहीं होता। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो हम बच्चों को काम के ऊपर जीत पहनना सिखाता है। तो साधु संत महात्मा सब मूत पलीती हैं। सिख लोग भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मूत पलीती कपड़ धोए। सिख बड़े बहादुर होते हैं, कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए तो तुम धोबन भी हो। परमात्मा आकर जब मूत पलीती शरीर रूपी वस्त्रों को धोता है तो तुम माताएं क्या बनती हो? उस धोबी की धोबिन बनती हो। धोबी कौन बनता है? शिव बाबा। शिव बाबा आकर धोबी बनता है और तुम माताएं उसकी धोबिन बनती हो। बीके की जैसे कि सेना इकट्ठी हो गई, कोई को तो पता भी नहीं है, कोई को तो फिर पता है भी कौन कौन कहां है। सब सेंटर के बच्चों को तो बुला नहीं सकते, माताओं को तो और भी नहीं बुला सकते, क्योंकि माताओं को तो बहुत बंधन होते हैं। बच्चों आदि को भी माताओं को संभालना पड़ता है, नहीं तो पुरुष रिपोर्ट करते हैं कि बच्चों को छोड़ करके बाबा से मिलने चली गई। यूं तो पुरुष चले जाते हैं तो घर बार कौन संभालता है? तुमको तो दिखाना है। वो हठ योग सिखलाते हैं और हम राजयोग सिखलाते हैं। हम घर बार छोड़ना नहीं पढ़ाते। क्या भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं है? अर्जुन गृहस्थी था या सन्यासी था? अर्जुन तो गृहस्थी था। तो अर्जुन जैसे पांडवों को, गृहस्थियों को भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने भी ज्ञान सुना लेकिन उन्होंने उसको उठाया नहीं। ज्ञान सुनकर भी कौरवों का पक्ष लिया। तो ज्ञान लेने के बाद भी अगर कोई उल्टी चलन चले, सत्य का पक्ष धारण न करे तो ज्ञान लेने से फायदा नहीं हुआ। तो पुरुष रिपोर्ट करते हैं, पुरुष चले जाते हैं घर बार छोड़ करके, तो तुमको दिखाना है हठ योग सिखलाते हैं और हम राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए हमको ये सहूलियत मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को रड़ी मारनी चाहिए, कन्याएं मिलकर मेमोरेंडम, माताएं मिलकर मेमोरेंडम दें सरकार को कि हमको पवित्र रहना है। बिना पवित्रता के भारत में स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता, राम राज्य स्थापन नहीं हो सकता। हमको ये सहूलियत मिले कि कोई भी हमको नगण न करे। कहते हैं कि पुरुष बाजारी बैल है तो नारियां भी कम नहीं है, वो भी वैश्याएं बन बैठती है। इसलिए बाबा ने समझाया था, तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि ये गंदा धंधा करना बंद कर दो, तुम्हारे कारण भारत की बहुत बदनामी हुई है। अभी तुम ये धंधा छोड़ करके स्वर्ग का द्वार बनो। पुरुषों ने तुमको नरक बनाया है और नरक में बैठाया है, तुम स्वर्ग का द्वार बनो। तुम ये काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। इन बेचारियों का भी कल्याण करना है। किनका? किसकी बात बताई? जो भी वैश्याएं हैं, जो बंधी पड़ी हैं वो धंधा करने के लिए, उनको भी समझाओ कि ये संगम युग है, कल्याणकारी, सबका कल्याण करना है। पवित्रता पर खूब रणियां मारती है, कहते हैं बी के बाहर नहीं निकलती है, प्रदर्शनी करती हो, इन वैश्याओं पर रहम करो। गवर्नमेंट भी इनों को कुछ न कुछ काम में लगाती रहती है, ऐसा तुम समझाओ जो अखबार में पड़ जाए। बीके तो इन वैश्याओं को भी ज्ञान दे करके गंदे धंधे से छुड़ाए रही है, क्योंकि काम महाशत्रु है। इससे तुम पतित पलिती क्यों बनते हो? ये सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। 6 जुलाई 1965 की वाणी का 3रा पेज। बाप आए करके इस वैश्यालय में माताओं को उठाते हैं। गोपों का काम है इन माताओं का मददगार बनना। अब जो मेहनत करेगा सो पावेगा। अपनी हमजिंस पर रहम करना चाहिए। किसके ऊपर रहम करने के लिए बोला? कौन सी हमजिंस? बात किससे हो रही है? माताओं से बात हो रही है। तो माताएं किसके ऊपर रहम करें? हैं? वैश्याएं। जो वैश्याएं ये धंधे में लगी हुई हैं, भारत का नाम जिनसे बदनाम हो रहा है, उन वैश्याओं को उठाना चाहिए, रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैश्यालय।